जब से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज नमाज।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह
व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह
व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह
व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह
व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह।
प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मौजूद हैं एक बार फिर अपने बहुत प्यारे और मालूमती प्रोग्राम आए नमाज सीखें। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है?
आए नमाज सीखें।
जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम नमाज सीखते हैं, नमाज के बारे में बहुत अहम तरीन बातें सीखते हैं, वुजू के मसाइल, नमाज के मसाइल, नमाज के फजाइल और नमाज ना पढ़ने के बारे में जो अजाबात हैं, जो वईदे हैं, वो वुजू में जो गलतियाँ बच्चे कर लेते हैं उनको सीखते हैं, नमाज में जो बच्चे गलतियाँ कर लेते हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज भी एक अहम तरीन मौजू के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस प्रोग्राम में हम मौजूद हैं। अपने मौजू पर बात करने से पहले दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह के आखिरी नबी, नबी हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम कोई चीज़ भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, इंशाल्लाह वो चीज़ याद आ जाएगी। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने वुजू के बारे में कुछ बातें सीखी थी, वुजू की नियत कैसे करनी है और वुजू से मुतालिक अहम तरीन बातें, वुजू शुरू करते वक्त क्या पढ़ना है, वुजू कहाँ पर जो है बैठकर करना चाहिए और वुजू से मुतालिक कुछ आदाब हमने सीखे थे। आज भी वुजू का तरीका और वुजू के बारे में जो आगे मजीद सीखने की बातें हैं आपके सामने बयान की जाएंगी। वुजू करने का सुन्नत तरीका क्या है, वुजू के आदाब क्या है, इंशाल्लाह इन बातों को भी हम आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। बड़ी तवज्जो के साथ इल्मे दीन हासिल करेंगे। नमाज मुसलमानों पर अव्वलीन फ़र्ज़ है, सबसे पहला फ़र्ज़ है। अब नमाज को दुरुस्त तरीके से पढ़ना ये हमारी जिम्मेदारी है और उस वक्त तक यकीनन हम नहीं पढ़ सकते दुरुस्त तरीके से नमाज जब तक हम इसको सीखेंगे नहीं। और नमाज सीखने के लिए हम प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं, आए नमाज सीखें। तो आपने अव्वल तो आखिर इस प्रोग्राम को देखना है ताकि हम अपनी नमाज को दुरुस्त और सही करने की कोशिश करने में कामयाब हो सकें। वुजू से मुतालिक बहुत सारी गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है, तो आइए वुजू से मुतालिक आगे हमने क्या करना है इसको सीखने की कोशिश करेंगे। जब आप वुजू करते हैं तो सबसे पहले आप अपने आस्तीनों को चढ़ा लेते हैं, चश्मा है तो वो उतार लें, टोपी इमामा उतार कर रख लें ताकि वुजू के दरमियान आपको फिर इसकी ज़रूरत पेश ना आए। इस बात का आपने ध्यान रखना है और फिर नीयत भी आपने कर ली और बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहना है। कोशिश करें और हर उज़्व को तीन मरतबा धोएं। हर उज़्व को कितनी बार धोएंगे?
तीन
मरतबा धोएं। हर पार्ट को आपने तीन मरतबा धोना है। कितनी बार धोना है?
तीन
मरतबा हर पार्ट को आपने धोना है। मिसाल के तौर पर चेहरा धोते हैं तो तीन मरतबा धोएंगे, हाथों को धोएंगे तो तीन मरतबा धोएंगे, कुल्ली करेंगे तो
तीन
मरतबा, जी जी नाक में पानी चढ़ाएंगे तो पांव धोएंगे तो
तीन
मरतबा। अच्छा, तरतीब क्या रखनी है हम इसको समझने की कोशिश करते कि किस तरतीब से हमने वुजू करना है, ठीक है ना। तो अगर आप नल से वुजू कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो आपने नल को उल्टे हाथ से खोलना है और इसके बाद जो है सीधे हाथ में पानी आपके आना शुरू हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले दोनों हाथों को पोंछों समेत धोना है। कहाँ तक धोएंगे? पोंछों समेत धोएंगे। पोंछे समझते किसे कहते हैं? पोंछे इसे कहते हैं, जी हाँ। तो हाथ को पोंछों तक धोना है, दोनों हाथ पोंछों तक धोएंगे और कितनी बार धोएंगे?
तीन
मरतबा। कितनी मरतबा धोएंगे?
तीन
बार धोएंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना, ताकि अगर हाथ में मिट्टी लगी है, गर्दो गुबार है, आलूदगी है, कुछ भी है, निशानात लगे हुए, अच्छी तरह से दोनों हाथों को धो लें, ठीक है। पोंछों तक धोना है और इसके बाद आपने कुल्ली करनी है। क्या करनी है?
कुल्ली।
जी हाँ, इसके बाद कुल्ली करते हैं और कुल्ली करते हुए देखिए बड़ा एक इसका आसान सा तरीका है लेकिन समझने की ज़रूरत है आपके। आप देखें हाथ आपने धो लिए, अब इसके बाद आपने आपने पानी की धार के नीचे हाथ रखना है, फौरन नलके को बंद कर देना है, आपके हाथ के चुल्लू में पानी भर जाएगा। ठीक है, यूँ चुल्लू रखना है। कैसे करेंगे? हाँ देखिए कुछ बच्चों से नाप करके दिखाएं, कुछ बच्चों से हो नहीं रहा होता है, कुछ तो यूँ कर लेते हैं कुछ यूँ कर लेते हैं। अब यूँ करेंगे तो पानी यहाँ कैसे रुकेगा भाई? पानी यहाँ रुकेगा नहीं? रुकेगा ना। कैसे करेंगे? चुल्लू बनाए ज़रा, देखो उनका चुल्लू थोड़ा सा वो हो रहा है, थोड़ा यूँ चुल्लू बनाओ ना, वरना पानी तो आपको गिर जाएगा भाई। हाँ ऐसे देखें, ऐसे अंगूठा मिला कर रखें इस, ये देख ले ये, ऐसे ऐसे करें। हाँ ऐसे दिखाएं ज़रा, फैजान आप दिखाएं, ऐसे आप दिखाएं ज़रा, इस तरीके से करना है। ठीक है ना बेटा? तो यूँ चुल्लू बनाएंगे अपना और इसमें ताकि पानी ठहर जाए, ठीक है, कोई सुराख वराख नहीं छोड़ेंगे वो गिरना शुरू हो जाए। फौरन नलके को बंद कर दें और उसके बाद उसको पानी को मुंह में डालने के बाद अच्छी तरह से मुंह में हिलाएंगे। जी यूँ करें दोबारा, ऐसे ये तरीका है देखें पानी, ठीक है। यूँ लेने के बाद मुंह में अच्छी तरह से पानी को कुल्ली करनी है, घुमाना है, घुमाए ज़रा ऐसे। अच्छा गरगरा भी करना है, गरगरा समझते हैं? हाँ ऐसे, ठीक है। अब मुंह में अच्छी तरह से पानी आपने घुमा लिया, अब दांत में अगर कोई चीज़ फंसी हुई है तो उसको निकाल देना है पहले से, जबान से पहले से निकाल दें उसको, मिसवाक कर लें, मिसवाक कर लेनी चाहिए सबसे पहले, तो मिसवाक कर लें तो अच्छी बात है, ठीक है ना। आप मिसवाक कर लेंगे अच्छी तरह से 3 मरतबा और इसके बाद जो है कुल्ली करें, ठीक है। कुल्ली में गरगरा भी करेंगे।
यूसुफ भाई जब रोज़ा हो तो जब भी गरगरा कर सकते हैं, गरगरा करने से पानी पेट में जा सकता है?
ये तो माशाल्लाह आपका बड़ा अहम सवाल है कि देखें अगर आपका बेटा रोज़ा हो ना तो फिर आप गरगरा नहीं करें, क्योंकि आप जब गरगरा करेंगे आप तो पानी क्या होगा हलक के
अंदर जाएगा,
नीचे उतर जाएगा, है ना, आपके हलक से नीचे पानी उतर जाएगा तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। तो इसीलिए आप रोज़े की हालत में गरगरा
नहीं
करेंगे, रोज़े की हालत में गरगरा
नहीं करेंगे,
ठीक है, बल्कि जो है सिर्फ कुल्ली करेंगे। लेकिन कुल्ली कुछ बच्चे होते हैं मुंह में पानी लेते हैं यूँ फेंक देते हैं, यूँ नहीं करना है, बल्कि पानी मुंह में लेकर अच्छी तरह से मुंह में
घुमाना
है और इस तरह से घुमाना है कि दांतों की खिड़कियों में और दाढ़ों के पीछे पूरे मुंह में अच्छी तरह से वो पानी पहुंच जाए, ठीक है ना। मुंह का कोई हिस्सा अंदर का खुश्क ना रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और गरगरा जो है रोज़े की हालत में नहीं करेंगे। तो ये कुल्ली कितनी मरतबा करनी है?
3 मरतबा
कुल्ली। तो प्यारे बच्चों 3 मरतबा आपने कुल्ली कर ली, अब इसके बाद 3 बार नाक में पानी चढ़ाना है, ठीक है, यानी नाक की सफाई करनी है। इस्लाम हमारा कितना प्यारा मजहब है, हमें सफाई सुथराई का दर्स देता है ना। देखें नमाज जो है जन्नत की चाबी है। नमाज क्या है?
जन्नत की चाबी।
नमाज क्या है?
जन्नत की चाबी।
हाँ अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। और वुजू करना, पाकी हासिल करना, ताहरत हासिल करना, ये नमाज की चाबी है, ठीक है, ये क्या है? नमाज की चाबी है। तो बगैर नमाज के जन्नत में इंसान कैसे जाएगा? जन्नत का ताला कैसे खुलेगा? नमाज है ही नहीं, बगैर चाबी के ताला खुल सकता है? नहीं खुल सकता। तो बगैर नमाज के आदमी जन्नत में कैसे जाएगा? और बगैर तहारत के नमाज कैसे सही हो सकती है, है ना? तो बगैर तहारत के नमाज दुरुस्त नहीं हो सकती, तो वुजू सही करना ज़रूरी है, ठीक है ना। और जब वुजू सही होगा तो नमाज सही होगी, नमाज सही होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से जन्नत में भी दाखिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने वुजू को सही करना है तो नाक में पानी चढ़ाना है, ये भी एक अंदाज़ है, वरना आम तौर पर नाक को वैसे ही लोग साफ़ नहीं करते हैं। वुजू की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह नाक की सफाई भी हो जाती है। तो अब आपने पूरा चुल्लू नहीं भरना, आधा चुल्लू भरना है, और आधा चुल्लू लेने के बाद आपने नल को बंद कर देना है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपने नाक के अंदर पानी को चढ़ाना है। इसका तरीका आसान सा ये है कि जब आप चिल्लू को नाक के करीब ले जाएंगे और थोड़ा सा सूंघेंगे, सांस लेंगे, ठीक है, जब सूंघेंगे तो पानी आपकी नाक में ऊपर तक चढ़ जाएगा। इसके बाद आपने ये जो छुंगलियाँ है ना, इसको कहते हैं छुंगलियाँ, क्या कहते हैं?
छुंगलियाँ।
जी हाँ, छोटी उंगलियों को क्या कहते हैं?
छुंगलियाँ,
छुंगलियाँ कहते हैं। आपने नाक में पानी चढ़ाने के बाद छुंगलियाँ के जरिए से नाक को साफ करना है, ठीक है, तीन मरतबा करेंगे, नाक को सिंकेंगे और अपनी नाक को भी अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, ठीक है। ये भी सुन्नत है, कुल्ली करना भी सुन्नत है, नाक में पानी चढ़ाना भी क्या है?
सुन्नत
है, ठीक है। इसके बाद अब आपने वुजू का पहला फर्ज अदा करना है। क्या करना है? वुजू का पहला फर्ज अदा करना है। तो प्यारे बच्चों, वुजू का पहला फर्ज है क्या है?
चेहरा धोना।
जी हाँ, वुजू का पहला फर्ज है चेहरा धोना। आपने चेहरे को धोना है और चेहरा धोने की जो इब्तिदा है ना, वो जहाँ से आपके बाल उगना शुरू होते हैं आदतन, यहाँ से लेकर थोड़ी तक और एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक, ये पूरा चेहरा है। आपने इस पूरे चेहरे को धोना है। इसका तरीका ये होता है कि आप नल के नीचे दोनों हाथों को रखते हैं, इसके बाद जो है पानी लेकर आप अपनी पेशानी पर हाँ लगा देंगे, छोड़ देंगे, और उसके बाद यहाँ से आप धोना शुरू करेंगे। पूरे चेहरे को इस तरह से आपने धो लेना है। दोबारा पानी लेंगे, फिर आप इस तरह से चेहरे को अपने धोना शुरू करेंगे, और तीसरी बार फिर आप पानी लेंगे और तीसरी बार फिर जो है वो पूरे चेहरे को धो लेंगे। तो ये है वुजू का पहला फ़र्ज। और चेहरा धोने में बाज़ बच्चे ये गलती कर रहे होते हैं कि वो पानी लेते हैं और ज़ोर से मुंह पर मारते हैं, या यूं करते हैं ज़ोर ज़ोर से मुंह पर छींटे मारते हैं। तो छींटे नहीं मारने चाहिए, एक तो दूसरों के कपड़े भी गीले हो जाएंगे, आपके कपड़े भी गीले हो सकते हैं। आप वुजू करके आ रहे होते हैं, ऐसा लगता है गुसल करके आ रहे हैं। लोग पूछते हैं कि वुजू करके आ रहे हो, गुसल करके आ रहे हो, हैं? तो इतना पानी ना गिरा दें कि ऐसा लग रहा हो कि गुसल करके आ रहे हैं। जितना ज़रूरी है ना, उतना ही आपने पानी इस्तेमाल कर।
जब बच्चे वजू कर रहे होते हैं, चेहरे पे पानी पे फूंक मार मार के मारते हैं, और ऐसे कर सकते
हैं। हाँ, ये अंदाज भी है ना, एक तो कि वो चेहरे पर पानी मारते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं, ये तरीका भी सही नहीं है, ऐसे भी नहीं करना चाहिए, और ज़ोर ज़ोर से मुंह पर जो है छींटे भी नहीं मारने चाहिए। इसका तरीका है कि पानी लें और पेशानी के ऊपर लगाएं और यहाँ से पूरे चेहरे पर फैला दें, ठीक है। अच्छा, आँखों को ज़ोर से बंद भी नहीं करना है। कुछ बच्चे आँखों को ज़ोर से बंद कर लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि पानी आँख के गोशों में ना पहुँचे, या यूँ मुंह को यूँ बंद कर लेते हैं, तो अगर यूँ बंद कर लेंगे तो होंठ भी आपके क्या होंगे, छुप जाएंगे, और उससे आपके होंठ धुल नहीं सके, लिहाजा इस बात को भी काफी ध्यान रखना जरूरी।
यूसुफ भाई, और कुछ बच्चे यहाँ से मुंह नहीं धोते?
जी हाँ, कुछ लोग इस हिस्से को नहीं धोते, वो सिर्फ आगे वाले हिस्से को धो रहे होते हैं ना। तो याद रखें, ये जो साइड वाला हिस्सा है आपके चेहरे का, इसको धोना भी ज़रूरी होता है। तो पूरा चेहरा धुल जाना चाहिए। अगर कोई भी जगह खुश्क रह गई ना, उससे वजू नहीं होता है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना ज़रूरी है चेहरा धोते वक्त। तो प्यारे बच्चों, ये था वजू का पहला फ़र्ज। और वजू की तरतीब हम सीख रहे हैं कि सबसे पहले हाथ पोंछों तक धोने हैं, कुल्ली करनी है, नाक में पानी चढ़ाना है, और पूरे चेहरे को कितनी बार धोएंगे?
तीन
मरतबा पूरे चेहरे को धोना है। और कोशिश करें वुजू में देखें पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए, ठीक है, पानी को ज़ाया करने से बचना है। इसके बाद अब क्या करना है, अब क्या करेंगे चेहरा धोने के बाद?
कोनिया धोएंगे,
या हाथ धोएंगे?
कोनिया
धोएंगे,
हाथ से लेकर
कोनिया। हाँ, क्या करेंगे?
हाथ से लेकर कोनिया तक के।
जी हाँ, अब आपने दोनों हाथ कोहनियों समेत धोने हैं, ठीक है, कोहनियों समेत, कोहनियों तक नहीं, बल्कि जो कोहनी है ना, इस कोहनी से भी ऊपर आपने धोना है। जी हाँ, अब देखें इसको जरा समझ लें। देखें, ये जो आपकी आस्तीन है ना, ये तो पहले से आप ऊपर आपने कर लेनी है, ठीक है, ये जो कोहनी है ना, तो इस कोहनी को भी धोना ज़रूरी है। कुछ बच्चे इसको हाँ ऊपर करके धोएं, ठीक है, ऊपर करके धोएंगे इस कोहनी को भी धो लेंगे।
ये ना यहाँ तक के हिस्सा धोना चाहिए।
यहाँ तक का हिस्सा धोना चाहिए, ये यहाँ तक का ये पूरा हिस्सा धुलना चाहिए, आपकी कोहनी भी धुल जानी चाहिए, ठीक है, और यहाँ वाला हिस्सा भी धुलेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यूं पानी लेते हैं, ऐसे पानी लिया फिर ऐसे ऐसे बहाते हैं, तो इससे क्या होता है आपका हाथ पूरा नहीं धुल पाता है ना, पानी साइडों से निकल जाता है, ये हिस्सा भी नहीं धुल पाता है। तो अब देखें इसका तरीका ये है कि आप ना नल के नीचे हाथ रख दें, यूं ना करें, बल्कि आप नल के नीचे हाथ रख दें और यूं धोते जाएं, ऐसे कोहनी भी आपकी धुल जाएगी अच्छी तरह से, और फिर यहाँ से आकर ये पूरा धो लें, तो ये बेहतर तरीका है, इससे आपका पानी ज़ाया भी नहीं होगा
और कोहनी भी
धुल जाएगी आपकी, जी हाँ कोहनी भी धुल जाएगी, आपका पानी भी ज़ाया नहीं होगा। कितनी मरतबा आपने करना है?
तीन
मरतबा। अच्छा अच्छा, पहले कौन सा हाथ धोएंगे, उल्टा या सीधा?
सीधा।
पहले कौन सा हाथ धोएंगे?
सीधा हाथ।
उल्टा हाथ नहीं धोएंगे, पहले कौन सा हाथ धोना है?
सीधा।
सीधा हाथ धोना है। कितनी बार धोना है?
तीन
बार धोना है, तीन मरतबा उल्टे हाथ को भी धो लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये दूसरा फर्ज अदा हो जाएगा, पहला फर्ज था पूरा चेहरा धोना और दूसरा फर्ज है दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, कोहनियों के साथ दूसरा हाथ धो लेना। तो ये वुजू के दो फर्ज अदा हो गए आपके। तीसरा फर्ज अदा करेंगे, तीसरा फर्ज अदा करने के लिए आपने अपने हाथों में तरी, अब इसका थोड़ा सा तरीका कर सीखना पड़ेगा, वो ये है कि जब आप नल खोलते हैं, नल खोलने के बाद आपने हाथ में पानी लेना है और नल को बंद कर देना, ठीक है, और उसके बाद उसको जो है वो दूसरे हाथ पर पानी को बहा दें, यानी आपने हाथ में पहले पानी लिया उसको दूसरे हाथ में बहा दें, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसके बाद अब आपने मसा करना है, ठीक है ना। अब इसका मसा करने का तरीका कार क्या होना चाहिए ये हम आपके सामने बयान करते हैं, ठीक है। देखिए एक तरीका तो ये कि इस तरह से आप अपनी उंगलियों को रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप पूरा मसा कर लेते हैं सर का। दो तरीके इसके हैं, हम आपके सामने दोनों तरीके बयान करेंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप जो है ये तीन उंगलियां जो हैं इनको इस तरह से सर के बीच में से पहले लेकर जाएंगे और उसके बाद अपनी हथेलियां लगाते हुए सर के बकिया हिस्से पर आपने इस तरह से हाथों को लेकर आना है। इसके बाद अपनी छुंगलियां आपने कान के सुराखों में दाखिल करनी है, सफाई करनी है, अंदर की कान की जो वो है जगह है उनको आपने इससे जो है वो साफ करना है और अंगूठे के पेट से आपने इस तरह से कान की पुश्त का मसा करना है। इसके बाद जो आपके हाथों की पुश्त है इससे आपने अपनी गुद्दी का मसा करना है, ठीक है। ये तरीका कार है इसका, हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि आपने मसा कैसे करना है, ठीक है। कौन आएगा, आप आ जाएं ज़रा, देखें अब प्यारे बच्चों ये आपको मसा करके दिखाएंगे कि मसा कैसे करना है। आप अपनी टोपी उतारे, देखें ये अब टोपी आपने उतार के रखनी है पहले से, आप पकड़ें टोपी इनकी सीधा से लेंगे। अब देखें अब ये मसा करके आपको दिखाएंगे कि मसा करना कैसे है, ठीक है। अब ज़रा मसा करके दिखाएं आप, प्यारे बच्चों ये वाला जो हिस्सा है आपने दोनों हाथों की ये जो उंगलियां हैं इनके ज़रिए से आपने सर के बीच वाले हिस्से का मसा करना है पीछे तक। जब आप हाथों को वापस लेकर आएंगे तो फिर आपने दोनों हाथों की हथेलियों को इस्तेमाल करना है और इसके बाद जो है अगला हिस्सा हम आपको बताते हैं। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका इसके फौरन बाद आपको बता देंगे, दूसरा तरीका क्या है वो बहुत आसान है, तो ये दोनों तरीके आपको करके बताएंगे। जी आराम आराम से लेकर जाएंगे। जी ये हथेलियां रुकिएगा करें, ये हथेलियां भी टच नहीं करेंगे, ठीक है सही। अब वापस लेकर आए, अब वापस में आपने यहां से लेकर आना है, ये से ये आपके सर का मसा हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका बहुत आसान है, वो भी कर सकते हैं आप। वो तरीका ये है कि आप ये दोनों हाथों की इस तरह से उंगलियां मिलाकर ये हथेलियां भी आप एक साथ ही लेकर चले जाएं पूरे पीछे तक, یعنی آپ کو واپس لانے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ ایک ساتھ ہی یہ پورا مسا کر سکتے ہیں پورے سر کا. ایک یہ بھی طریقہ ہے. تو یہ طریقہ اور آسان ہے, آپ کو دوبارہ پیچھے لے کر ہی نہیں آنا ہے ان کو. ٹھیک ہے جی, یہ پورے میں ہاتھ گھماؤ ایسے. تو ایک طریقہ پیارے بچوں یہ ہے. اس کے بعد آپ نے کان کے سوراخ میں انگلیاں ڈالنی ہیں, یہ والی ڈالیں آرام آرام سے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اس سے آپ نے اس سے یہ جو انگوٹھے ہیں اس کے پیٹ سے, انگوٹھے کی پیٹ سے آپ نے کان کی پشت کا مسا کرنا ہے. جی, اب ہاتھوں کے آپ کی جو پشت ہے آپ نے اپنی گدی کا مسا کرنا ہے. جی, کر کے بتائیں آرام سے ایسے. یہ ہے پیارے بچوں سر کا مسا کرنے کا طریقہ, کہ آپ نے کس طرح سے مسا کرنا ہے. دو طریقے ہم نے آپ کو بتائے, آپ نے اس طریقے سے مسا کرنا ہے. جی بیٹھیں گے. تو پیارے بچوں یہ تھا مسا کرنے کا طریقہ کہ وضو میں مسا کس طرح سے کرنا ہے. اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ مسا کر رہے ہیں اور پانی ضائع ہو رہا ہے, نلکے میں سے پانی گرتا جا رہا ہے, تو یہ اللہ پاک کی نعمت ہے, ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا. اسی لیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ پانی ہمارا ضائع نہ.
اس پر سوال ہے کہ بچے تھوڑا یہاں سے یہاں تک لے آتے ہیں پورے کان سے آگے, صحیح ہے, اور اس کے بعد جب مسا کر رہے ہوتے ہیں مسا سے آگے یہاں جب گردی پہ لاتے ہیں گردی سے یہاں سے پورا جسم تک سینے تک لے آتے ہیں, تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟
تو دیکھیں اصل میں مسا جو کرنا ہے نا گردی کا کرنا ہے, گردن کا نہیں کرنا. گردن کا مسا منع ہے, بلکہ گدی کا مسا کرنے کے بعد گردن کا بھی کرتے ہیں, تو گردن کا مسا منع ہے, گردن کا مسا نہ کریں. ٹھیک ہے, بلکہ صرف گدی کا ہی مسا کرنا ہے. اس سے آگے پھر یہاں نیچے تک لے کر آنا گردن کو سینے کو دھونا یا مسا کرنا تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جتنا حصہ بیان کیا گیا ہے اتنے حصے کو مسا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور چوتھا فرض کیا ہے, دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ٹخنے کسے کہتے ہیں؟
ٹخنے کسے کہتے ہیں بھائی, جب ہم نے بیان کیا ہے کہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونے, اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹخنے کسے کہتے ہیں. دیکھیں ٹخنے کہتے ہیں یہ جوڑ ہوتا ہے نا ہمارے پاؤں کا, جو جوڑ ہوتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر یہ آپ کے پاؤں کا پنجہ ہے اور یہ آپ کے پاؤں کی پوری پنڈلی. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو جوڑ ہوتا ہے نا آپ کے پنجے کو جو آپ کی پنڈلی سے ملا رہا ہوتا ہے جو جوڑ, اس کو کہتے ہیں ٹخنا. کیا کہتے ہیں؟ تو اب اپنے وضو میں ٹخنے کو بھی دھونا ہے. ٹھیک ہے, وضو میں ٹخنے کو بھی دھونا ہے, لیکن اس کے لیے طریقہ یہ کہ پہلے آپ نے سیدھا پاؤں دھونا ہے, اس کے بعد الٹا پاؤں دھونا ہے. ٹھیک ہے, اور کتنی کتنی بار دھونا ہے؟ تین تین مرتبہ. کتنی بار دھونا ہے؟ تین تین مرتبہ دھونا ہے دونوں پاؤں کو. ٹھیک ہے, ٹخنوں سمیت دھونا ہے, لیکن پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال بھی کرنا ہوتا ہے. آپ نے خلال بھی کرنا ہوتا ہے دونوں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں جو گیپ ہے نا, ہو سکتا ہے کہ یہاں پانی نہ پہنچ پائے, ہو سکتا ہے کوئی مٹی کوئی گندگی کوئی گد و غبار لگا ہوا ہو, تو اس لیے آپ اس میں الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے آپ جو ہے اس طرح سے خلال کریں گے سیدھے پاؤں کا, اس کے بعد الٹے پاؤں کا. تو سیدھے پاؤں کا خلال کریں گے تو آپ چھنگلیاں سے اسٹارٹ کر کے انگوٹھے پہ ختم کریں گے, اور الٹے پاؤں کا خلال کریں گے تو الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے چھنگلیاں تک خلال کریں گے. تو پیارے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آئے نماز سیکھیں, جس میں ہم نے آپ کے سامنے وضو کا مکمل طریقہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, سنت کے مطابق ہمیں اللہ رب العزت اپنی تمام عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سے دلوائے گی تم کو جنت نماز.